તારીખ 12/8/1995 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 381
બેન શ્રી કે વચનામૃત વચનામૃત 7 નંબર કા વચનામૃત આજ પૂજી બેન શ્રી કા જન્મદિન હૈ पिछले सैकड़ों सालों में स्त्री पर्याय में ऐसे धर्मात्मा हुए हैं ऐसा जानने में नहीं आता। कल तो बराबर आता था ना। इतिहास को देखा जाए तो पिछले सैकड़ों सालों में स्त्री पर्याय में ऐसा धर्मात्मा हुआ हो ऐसा जानने में नहीं आता। पूर्वभव के संस्कारी थे और इसी कारण से 15 साल की छोटी उम्र में सत्संग के विषय में बहुत भावना उत्पन्न हुई। इस उम्र में वो कराची में रहते थे और वहाँ सत्संग मिलता नहीं था, सत्संग की कोई संभावना नहीं दिखती थी कि कुछ ऐसा प्रदेश है जहाँ जैन साधुओं का आना जाना नहीं होता है या कम होता हो कुछ भी। हमने पूछा था कि आपने ऐसा कठोर कदम कैसे उठाया, सत्संग के लिए बहुत कठोर कदम उठाया था उन्होंने जबकि उनकी प्रकृति में कठोरता नहीं थी, वो प्रकृति के उतने नरम थे कि 10-12 साल की उम्र में अगर पानी भरने को नदी पे जाएं तो सबसे आखिर में दूर खड़ी रहे, सबको पहले भरने लेने दो बाद में हम भरेंगे। कभी खिंचातानी किसी से नहीं करते थे, मतलब छोटी बात में भी खिंचातानी नहीं करते थे। दूसरी जो बड़ी उम्र वाली बहनें ऐसे बोलती हैं कि चलो इनको पहले भरने दो वो तो शाम तक खड़ी रह जाएगी किसी को बोलेगी नहीं, तो उनको आगे भरने देते थे तो वो तो बोलेगी नहीं कि मेरे पानी भरना है, वो तो खड़ी रह जाएगी, वैसे बहुत नरम है उनको पहले भरने दो, अपन तो धक्का लगा के भी भर लेंगे लेकिन वो कहाँ भरेगी। उतनी नरम प्रकृति होने के बावजूद भी सत्संग के मामले में उन्होंने बहुत कठोर कदम उठाया, 15 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि उनको ये मालूम था कि मुझे सत्संग के लिए कोई जाने नहीं देंगे, ससुराल का घर भी वहाँ था और अपना बड़ी बहन का घर भी वहाँ था, माँ तो छोटी उम्र में स्वर्गस्थ हो गए थे। तो बिना कहे बिना कोई सामान लिए बिना कोई खाने पीने की पानी की भी व्यवस्था किए बिना ऐसे ही ट्रेन के टाइम पे घर से गुपचुप निकल करके निकल गए। हमने पूछा था कैसे कैसे किया आपने, और वो भी उतनी उन जमाने में, आज का जमाना अलग है। आज के जमाने में हमारे घर में जो लड़कियां होती है उतनी स्वतंत्रता उन जमाने में नहीं थी। फिर भी आपने ऐसा साहस कैसे कहा किया? तो बोले कि सत्संग के बिना मेरा वहां रहना मुश्किल था, इसलिए ये अंदाज था हमारा कि सत्संग मिलेगा तो देश में, हमारे देश में मिल सकता है, और कई जगह सत्संग मिलने का कोई, इधर कराची में तो सत्संग मिल ही नहीं रहा है, मिलने का संभव भी नहीं दिखता है, तो ऐसे निकल गए थे। तात्पर्य यह है कि सत्संग के विषय में प्रारंभ में जिसको इतना मूल्य होता है, ऐसा जीव सत्संग के लाभ से वंचित नहीं रहता, उनको सही सत्संग का लाभ होता है, माने उसको सत्संग से आत्मकल्याण हो ही जाता है। लेकिन जिसको सत्संग का मूल्य नहीं है, या मिलता है तो जैसे मुफ्त में माल मिलता है जिसकी कदर नहीं हो, ऐसे बहुत हल्के से जो लोग लेते हैं उनको सत्संग का लाभ होना बहुत कठिन है, मुश्किल है। तो एक जीवंत उदाहरण है हमारे सामने कि उन्होंने सत्संग के विषय में अपना स्वयं जीवन ही बोध स्वरूप प्रदर्शित किया है। बाद में वो गुरुदेव के परिचय में आए और फक्त 3 ही साल में, यानी 18 साल की उम्र में वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुए थे, और करीब 78 साल की उम्र में उन्होंने देह को त्याग किया है। तो 60 साल की उनकी जो साधक दशा रही, 78 में से 18 निकाल दें तो 60 साल की जो साधक दशा रही और गुरुदेव का सानिध्य रहा 50 साल तक, पिछले 10 साल तो गुरुदेव स्वर्ग में चले गए थे, 50-50 साल तक तो अपना गुरु का जिसको सानिध्य मिला, वो भी समर्थ गुरु का, पर खुद ने भी 60 साल तक जो साधना की है, वो साधना के कारण से उनकी जो आध्यात्मिक दशा थी, इनकी प्रशंसा गुरुदेव भी बार बार करते थे, या गुरुदेव थकते नहीं थे उनकी प्रशंसा करते हुए। तो जब सोनगढ़ में रहते थे तब बहनों की, महिलाओं की धर्म सभा में प्रवचन करते थे। रात्रि को जब गुरुदेव की रात्रि चर्चा का समय होता था तो गुरुदेव की रात्रि चर्चा में बहनें नहीं आती थी, और बहनों को उस समय बिल्कुल ऐसा ही रहता था, तो बहनश्री का सत्संग और प्रवचन मिलता रहता था। जब तक इनका स्वास्थ्य ठीक रहा, प्रवचन बहुत साल तक चला, पिछले सालों में वो प्रवचन बंद रहा था, इतना स्वास्थ्य उनका कमजोर रहा। ऐसे प्रवचन और सत्संग के दौरान बहुत सी बातें निकली हैं, उसमें से कितनी बातों इस ग्रंथ में संकलित हुई है जिसका टाइटल है वेंचर के वचनामृत। और खास करके इस ग्रंथ में कोई मुमुक्षु के लिए मूल्यवान विषय है तो वो है, प्रयोजनभूत विषय है तो वह है कि मुमुक्षु की भूमिका की, पात्रता की बहुत से बातें उन्होंने अपने अनुभव से खोली है, और भी ज्ञान दशा की, मुनि दशा की, जिनेन्द्र की दशा की, और भी कई बातें आई हैं, फिर भी मुमुक्षु की भूमिका की बातें बहुत आई हैं, तो इसलिए मुमुक्षु के लिए ये ग्रंथ अधिक उपकारी है, और इसका संकेत भी गुरुदेव ने किया था और इस पर प्रवचन भी किए हैं, वो प्रवचन आज भी टेप में मौजूद है। उसमें से 60 नंबर का वचनामृत है जिसमें मुमुक्षु को मार्गदर्शन दिया है, मार्गदर्शन का वचनामृत है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव संसार में भटकते भटकते सुख की लालसा में विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते अनंत दुखों को सहता रहा है। ये जीव की, संसारी जीव की परिस्थिति क्या है उसका बयान है। परिभ्रमण करने वाला संसारी जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है और वो अनेक क्षेत्र में संसार में पूरे राज 14 राजयोग के सभी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और अज्ञान दिशा के सभी पर्याय उसने धारण की है। उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सामान्य बात क्या है कि उसको सुख की लालसा रही है हमेशा, क्योंकि सुख उसका स्वभाव है तो सुख वो चाहता है हमेशा हमेशा, परंतु वो सुख की लालसा उसने उसके विषयों में के पीछे रही है और उसकी दौड़ जो है वो भी विषय जुटाने के लिए रही है, पंचेंद्रिय के विषय को जुटाने के लिए रही है और उसके फल स्वरूप जीव ने बहुत दुख भोगा है, यानी अनंत दुख सहन किया है। ये जीव की, परिभ्रमण करने वाले जीव की परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी क्या बना है वो बात करते हैं कि कभी उसे सच्चा सुख बतलाने वाले मिले, कभी ऐसा भी पुण्य योग बना है कि जिसमें उनको सच्चा सुख विषय में नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है ऐसा बतलाने वाले भी मिले हैं, तो वो शंका रख कर अटक गया, बतलाने वाले पे शंका किया। ऐसा होता है कि बतलाने वाले को भी वो देखते हैं कि वो भी खाते हैं पीते हैं, पंचेंद्रिय के विषय में उनको देखते हैं, चतुर्थ गुण स्थान में खास करके ज्ञानी की दशा थोड़ी अटपटी रहती है, तो अटपटी दशा में वर्तते देखते हुए बौद्धिक स्तर से ज्ञानी मानते हुए भी पहचान नहीं होने के कारण से उनको शंका पड़ती है, तो बोलते हैं तो ऐसे, कहते हैं तो ऐसे, लेकिन वर्तन में तो कोई दूसरी बात दिखती भी है, उल्टी बात दिखती है, तो स्थूल बुद्धि में वो बात रहती है कि जैसा बोलना होता है वैसा ही वर्तन होना चाहिए, जबकि ये कभी संभव नहीं होता। साधक दशा में कभी ऐसा संभव नहीं होता कि जितनी समझ हो, जितना उपदेश हो, उतनी दशा हो, क्योंकि उपदेश पूर्ण पद का होता है और साधक दशा माने अधूरी दशा। साधक दशा वो पूर्ण दशा नहीं है, वो अधूरी दशा है, तो अधूरी दशा में क्या होता है कि परिणमन अधूरा होता है, जबकि इसके ख्यालात अधूरा नहीं होता है, इसका उपदेश अधूरा नहीं होता है, उसका आदर्श अधूरा नहीं होता है, उसका ध्येय अधूरा नहीं होता है, उसका लक्ष्य अधूरा नहीं होता है, लक्ष्य पूर्णता का होता है, और वर्तन में परिणमन में अधूराश होती है तो शंका पड़ती है। तो जब शंका पड़ती है तो इनकी दशा और उपदेश का गुण है तो सुनने वाले को, उपदेश सुनने वाले को डरता नहीं, उसका उपदेश परिणमता नहीं। क्यों? कि जब शंका पड़ती है तब अभक्ति के परिणाम होते हैं। क्या होता है? अभक्ति के परिणाम होते हैं। उपदेश किसको चढ़ता है? जिसको भक्ति के परिणाम हो उसको ही उपदेश चढ़ता है, जिसको अभक्ति के परिणाम हो उसको कभी उपदेश चढ़ सकता नहीं है। तो परिभ्रमण करते हुए सच्चे उपदेश देने वाले मिले तो भी क्या हुआ कि बहुभाग तो शंका में अटका है। बाह्य दृष्टि होने से और ज्ञानी के परिणमन में अंतरात्म गुण होने से वो बाह्य दिखाई नहीं देते बाहर में, और बाहर में चारित्र होके कितने परिणाम विषय कषाय वाले होते हैं, वो विषय कषाय को देखते हुए उनको शंका पड़ती है। जीव का अनंत काल का परिभ्रमण में एक खास कोई मुख्य कारण रहा तो ये भी रहा है कि ज्ञानी पुरुष मिलने पर भी उनको ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष योग के लाभ से वंचित रहना पड़ा। इसका कारण यह रहा कि उसको शंका रहा करी है, कभी न कभी शंका उठी है, ये बाह्य दृष्टि का कारण है। और वो बाह्य दृष्टि जहाँ तक मिटती नहीं है वहाँ तक उसका अंतर में अंतरात्म गुण है जो अपूर्व है, ये अपूर्व गुण पर उसकी दृष्टि नहीं जाती और उनको फिर अपने स्वयं के लाभ से, पारमार्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ता है। अपना खुद का उपादान का ये कारण है। बाह्य दृष्टि इसका कारण है। बाह्य दृष्टि रहने से शंका उठे बिना रहेगी नहीं, क्योंकि सामान्य मुमुक्षु को इतनी योग्यता नहीं है वो निशंक रूप से ज्ञानी के चरण में बैठकर अपना आत्महित करे। इतनी योग्यता हो तो वो उत्तम कोटि का मुमुक्षु बन जाता है, क्योंकि सामान्य योग्यता में न उतना वो संग करता है और थोड़ा बहुत जो संग करता है कोई थोड़ा कोई बहुत, तो उसमें शंका उठे बिना नहीं रहती। शंका उड़ती है तो अभक्ति के परिणाम सत्य होते हैं, और अभक्ति के परिणाम से उपदेश का परिणमन होना बन नहीं सकता।
तीन प्रकार के दोष नहीं गिनना 416 में है, मतलब 416 में तीन प्रकार के दोष बताए हैं।
हाँ,
मैं कुछ समझता हूँ, मतलब कैसा वो दोष तो नहीं गिनना चाहिए
वो दोष,
वो दोष
तो कारणभूत है ही, तो उसमें मैं समझता हूँ वो भी बाह्य दृष्टि है। क्या समझता है यानी जितना समझता है क्या, वो भी बाह्य दृष्टि है, वो तो सूक्ष्म दोष है, ये तो स्थूल दोष है। ज्ञानी के विषय कषाय के परिणाम अंश देखते हुए भक्ति के परिणाम शंका के परिणाम होना वो तो स्थूल दोष है। ऐसा स्थूल दोष होता है तो उसका उद्देश्य वो परिणमता नहीं है। कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा। कभी ऐसा बना कि उसको शंका तो नहीं हुई, इतनी योग्यता में आया कि इनको शंका नहीं हुई, लेकिन उपेक्षा रहे, अपेक्षा नहीं रही यानी गरज नहीं रही। ठीक है, ज्ञानी है, जानते हैं, अपने को जब जब फुर्सत मिलती है अपन भी सुनने को जाते हैं, अपेक्षा नहीं रही, उपेक्षा रहा करे, यानी जितनी गरज होनी चाहिए उतनी गरज नहीं रही, यानी आत्मकल्याण की गरज नहीं रही, तो ज्ञानी की उपेक्षा होती है। आत्मकल्याण की गरज हो तो उनका जीवन स्वयं आदर्श रूप है। एक छोटी उम्र में स्त्री पर्याय में, अब तो 15 साल की तो लड़की बोली जाती है, स्त्री नहीं बोली जाती है, उसमें इतना साहस किया था, तो इसके पीछे क्या हेतु था? एक आत्मकल्याण करना है। जीवन में मुझे और कुछ नहीं करना है, आत्मकल्याण एकमात्र करना है, उसके पीछे उन्होंने पूरा जीवन को परिवर्तित कर दिया और घर को छोड़ दिया।
वंचना बुद्धि
नहीं, वंचना बुद्धि है, उपेक्षा करता है तो क्या है, विरोध नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर बुद्धि आनी चाहिए पहचान से। तो पर उसके पहले भी अगर विश्वास आया तो बहुत गरज होनी चाहिए, जिस गरज की मात्रा बढ़ने से पात्रता बढ़ती है और पात्रता बढ़ने से उसकी पहचान होने का अवसर आता है। और पहचान होती है तो ये सम्यक दर्शन का एक बीजभूत कारण पैदा होता है। सत्पुरुष की पहचान है उस सम्यक्त्व का बीजभूत कारण है। इस वक्त का जो अगस्त का आत्म जागृति आएगा इसमें वो लेखांक आएगा। सम्यक्त्व का बीज, बीज कहाँ है? सम्यक्त्व का बीज है सत्पुरुष की पहचान होने में। यहाँ से लाइन पलटती है मुमुक्षु दशा में। बाकी तो सब पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय व्रत नियम कुछ न कुछ करते रहते हैं, ऐसे ओक संज्ञा से सब क्रिया करने से आत्मकल्याण होता है ऐसा कभी बनता नहीं है। वो सब अनंतवार किया है, बहुत किया है, अभी तो कुछ नहीं करते। तो कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा, अपना स्वरूप गुमाना पड़ा, अपेक्षा नहीं रखी, उपेक्षा किया, तो इसे अपने को ही नुकसान हुआ है। अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने में उसको बाधा आई, ये उपेक्षा वृत्ति स्वयं बाधक हो गई। ये भी एक जीव की भूल हुई है अनंत काल में, ऐसी भूल जो है वो बार बार हुई है। कभी पुरुषार्थ किए बिना कभी कभी क्या क्या बना है, इतिहास सुनने लायक है, हमारा स्वयं का इतिहास है ये, क्या क्या भूल किया हमने। कभी पुरुषार्थ किए बिना अटक रहा, सुनने को मिला, समझने को मिला, स्वीकार भी किया, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हुआ, तो पुरुषार्थ किए बिना अटक रहा। मैंने सुनता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन पुरुषार्थ उठा तो जहाँ तक परलक्षी प्रवृत्ति रहती है वहां तक पुरुषार्थ के योग्य जीव नहीं होता। पर स्वलक्षी प्रवृत्ति रहती है तो शुरू में ही अनंत जन्म मरण कर चुका है, ऐसा अपनी आत्मा का करुणा आती है, वो करुणा में वेदना होती है और वही जीव मोक्ष का प्रयत्न के लिए पुरुषार्थ के लिए अधिकारी बनता है। तो कभी पुरुषार्थ किए बिना अटका, मनुष्य को चला गया, जो भी थोड़ा बहुत कुछ था दूसरी गति में तो पता ही नहीं चलता है, फिर यही संसार चालू हो जाता है। तो कभी पुरुषार्थ किया तो भी थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिरा। अब क्या कहते हैं, कहां तक हुई घटना कि कभी पुरुषार्थ भी चला लेकिन अल्प मात्रा में चला, पर्याप्त मात्रा में पुरुषार्थ नहीं चला तो भी वहां अटक गया या संतुष्ट हो गया और फिर गिरा परिणाम। मुमुक्षु की भूमिका में परिणाम कभी ठीक होते हैं कभी ठीक नहीं भी रहते हैं। ये जो परिणाम का चढ़ाव उतार होता है ये होता रहता है, इससे कोई बाहर निकल करके एकदम आत्म उन्नति के श्रेणी के परिणाम में आ जाते हैं तो सम्यक दर्शन तक पहुंच जाते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक परिणाम का चढ़ाव उतार चालू रहता है। इसलिए यथार्थ विधि से उन्नति की श्रेणी में आना जरूरी है कि जिससे परिणाम दिन प्रतिदिन उत्तरो उत्तर चढ़ते भावों में रहा करें और उसमें गिरावट नहीं आए।
परिणाम में चढ़ाव उतार होता है, परंतु अभिप्राय में गलत पाती है। परिणाम में वो पुरुषार्थ की कमी शिथिलता की वजह से हो सकता है, परंतु उसमें अभिप्राय की भूल नहीं होती। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
कभी कभी ऐसा बनता है, हमारा दोष हो परिणाम गिरे, लेकिन ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, ऐसा लेकर के कभी हम दोष के बचाव के पक्ष में तो नहीं आ जाते। उस वक्त क्या होता है, एक बहुत सूक्ष्मता से जांच तलाश करने का विषय है। कि हमारा अभिप्राय दोष करने का नहीं है, फिर भी दोष तो होता है। जब हम ये बात लेते हैं कि हमारा दोष नहीं था, हमारा दोष हुआ लेकिन हमारा अभिप्राय नहीं था, इसलिए हमारा दोष क्षम्य है या इसको गौण करना चाहिए, ऐसा जो बचाव है ये दोष करने का एक नया सूक्ष्म अभिप्राय को गढ़ता है और एक नई गंभीर भूल सूक्ष्मता से पैदा होती है और आगे जाके वो पनपती है और फिर बात गड़बड़ हो जाती है परिणाम में। इसलिए भले ही हमारा दोष करने का अभिप्राय नहीं हो, तो भी अगर हमारे से दोष हुआ तो हमको कैसा परिणाम आना चाहिए, ये बात थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। कि भले हमारा अभिप्राय नहीं था, फिर भी हमारा दोष हुआ क्यों, ऐसा उस पर हमारा खुद का विरोध हमारे दोष पर आ जाना चाहिए, जब तो हमारा अभिप्राय सच्चा है। लेकिन हमारा अभिप्राय नहीं है इसलिए हमारे दोष को गौण करो या इसको छोटा सा गिनो, उसको बड़ा मत गिनो, ये अभिप्राय की भूल हो जाती है वहां फिर से। और ये भूल जो है अगर समझ में नहीं आती है तो ये पनपने में देर नहीं लगेगी। ऐसा है, जीव को ऊंचे आने में, ऊपर उठने में ताकत लगानी पड़ती है, गिरने में नहीं लगानी पड़ती। एक 2-3 टन का पत्थर हो, अगर इस पत्थर को 4 तल्ले पर उठाना है तो 8 मजदूर चाहिएगा जब वो इस पत्थर को ऊपर ले जाएंगे, और गिराने में एक ही आदमी काफी है, ऊपर छत पर से उसको धक्का दिया, स्वयं अपने वजन से वो नीचे आ जाएगा। जब हमारे यहाँ अभिप्राय की चर्चा चलती है तो कभी कभी हमने ये देखा है कि चलो हमारा अभिप्राय तो नहीं था लेकिन ऐसा हुआ, ये सामने वाले को देखना है, हमको नहीं देखना है। हम खुद ही भूल करें, हम खुद ही दोष करें और हम खुद ही कहें कि हमारा अभिप्राय नहीं है, वो बात हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, तो हमारे लिए एक गंभीर भूल है ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हमें ये लेना है कि अभी हमें तो ऐसा लेना चाहिए कि अभिप्राय नहीं था फिर हुआ कैसे, ये अभिप्राय विरुद्ध क्यों हुआ हमको, इसका खेदाना चाहिए। तो अभिप्राय सच्चा है लेकिन जो अभिप्राय नहीं था ऐसा करके कोई आर्ग्यूमेंट में जाता है तो एक प्रकार का बचाव है और उसमें दोष दृष्टि वहाँ साबित हो जाती है और दोष दृष्टि गुण दृष्टि से स्वभाव दृष्टि से विरुद्ध जाति की है, तो स्वभाव दृष्टि प्रकट नहीं होगी, तकलीफ तो होगी, दूर हो जाएगा। तो कभी पुरुषार्थ किया तो थोड़ा पुरुषार्थ किया, आगे के पुरुषार्थ के लिए तो वंचित रहा, अटक गया और अब गिरा। इस प्रकार जीव अपना स्वरूप प्राप्त करने में अनंत बार अटका। ऐसे ऐसे कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ऊंचे ऊंचे गया तो भी अटका अटका और आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं हुआ। अब कहते हैं कि पुण्योदेश है, यह देह प्राप्त हुआ, पुण्योदेश है, यह देह प्राप्त हुआ है, मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है जो अनंत काल में बहुत दुर्लभ है, बहुत सीमित काल में जीव निगोद में चला जाता है, परिभ्रमण करते करते बहुत सीमित काल में वो निगोद में जाता है। अगर आत्म कल्याण को नहीं प्राप्त करता है तो निगोद की पर्याय एकेंद्रीय की है, उस एकेंद्रीय पर्याय में से दो इंद्रिय जिसको ईयर कहते हैं अपन, अब हिंदी में क्या कहते होंगे, ईयर ईयर ही कहते हैं, होना बहुत मुश्किल है। पंचेंद्रिय तो बहुत दूर की बात है, पंचेंद्रिय तो त्रिंद्रिय भी होते हैं। जब ये पूज्य बैंसरी प्रवचन दे रहे थे तब गुरुदेव विराजमान थे, तो गुरुदेव के प्रति उनका संकेत है कि सत्पुरुष का योग भी मिला, मनुष्यत्व मिला और सत्पुरुष का योग भी मिला। ये खुदे खुद ने ये ग्रंथ नहीं लिखा है, उस वक्त सुनने में जो बहनें थी वो बहनें, कुछ कुछ बहनें उसमें से अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, तो लिखी हुई बातें कई बहनों का थी, उसमें से चुन चुन करके ये वचनामृत का ग्रंथ बनाया है। अभी भी ऐसी कुछ लिखाई लिखी हुई बातें मौजूद है जो इस ग्रंथ में नहीं आई है, इस पर एक और भी ग्रंथ बनने का प्रयास चल रहा है, जब प्रकाशित होगा तब उसे थोड़ा लाभान्वित होगा। लेकिन और भी बहुत सी बातें जो है तो इनके बहनों की लिखावट में थी वो मिली है और उस पर एक नया ग्रंथ बनने का भी प्रयास चलता है। एक तो गुरुगुण संभावना तो बना ही, उसमें तो एक खास विषय पूरा जितनी भी लिखावट था उसमें से गुरुदेव प्रति उनकी भक्ति गुणानुवाद किस किस प्रकार के शब्दों में व्यक्त हुआ है, उतना एक ही सब्जेक्ट को चुन करके वो ग्रंथ बना है जो अभी अभी प्रकाशित हुआ एक साल पहले। अब यो है एक साल पहले क्या कुछ महीने पहले ही प्रकाशित हुआ है और दूसरा ग्रंथ भी प्रकाशित हो जाएगा। तो कहते हैं कि पुण्योदेश यह देह प्राप्त हुआ, यह दशा प्राप्त हुई, ऐसे सत्पुरुष का योग मिला, ऐसे सत्पुरुष का योग भी मिला, महापुरुष का योग मिला। अब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा, ये पूछा है कि ऐसा सुयोग बना है, अब तुझे पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण नहीं करना है या नहीं कर रहे हो तो उनको कब करोगे, ऐसा योग कहाँ बार बार मिलने वाला है। एक बहुत ये सबसे दुर्लभ है, अब तुम अपना कल्याण नहीं करेगा तो कब करेगा, प्रश्न पूछ, तुम अपने आत्मा को पूछो ना कि अब नहीं करना है तो कब करना है, वो तो बताओ। जिसको अब नहीं करना है ऐसा सुयोग हो और इसकी भटकन को मिटाने में कोई समर्थ नहीं है, उसको भटकना पड़ेगा। ये जीव पुरुषार्थ का तात्पर्य वो है। उपदेश का तात्पर्य क्या है? ये जीव, तुम मनुष्य नहीं कहा, तुम जीव हो, तुम अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ कर सके ऐसी परिस्थिति मौजूद है, तुम क्यों नहीं करता है, क्या क्यों बहानाबाजी करता है? बहानाबाजी में क्या करता है, क्या करे? कुछ उपाधियां ऐसी है, कुछ व्याधियां ऐसी है, कुछ न कुछ, पर कुछ न कुछ तो होता ही है सबको इस काल में, तो उसका बहाना लेकर के वो पुरुषार्थ नहीं करता, ये बहानाबाजी है। कृपाल देव ने एक वचन लिखा है, ऐसे लौकिक कहावत है और वचन कुछ एक गंभीर है, गंभीर नहीं है, फिर भी इसका आशय गंभीर होने से उन्होंने पत्र में लिख दिया। वरना गंभीर ऐसे सत्पुरुष और गंभीर वचन को प्रयोग नहीं करते हैं उपदेश में, फिर भी आशय गंभीरता के कारण से उन्होंने इस वचन का प्रयोग किया है। गुजराती में कहावत है, रांडी रुवे मांडी रुवे पर साथ भरतार वाले रुवे से आता। कोई बाई है, इसका धनी मर जाता है तो बोलते कि वो रांडी है तो रोती है बेचारी, इसका धनी मर गया है क्या करे। कोई स्त्री ऐसी होती है कि उसको धनी होने के बावजूद भी रोती है कि क्या करे, कमाता नहीं है, वो है ऐसा है, निकम्मा है, कुछ आता नहीं है, वो है बहुत प्रतिकूलताएं हैं। तो कोई रांडी रोती है, कोई मांडी मैंने घर मांड करके भी रोती है, लेकिन जिसको साथ साथ भरतार हो गए वो कैसे रोते है, कैसे रोती है, मैंने साथ साथ धनी होने पर भी रोती है। मतलब कि तुमको तो हर जगह से पूरी अनुकूलता आ गई है, मनुष्य पर्याय मिला, सत्पुरुष का योग मिला और तुमको समझने की शक्ति है, सूक्ष्म है, सब कुछ है, सब अवसर आ चुका है, फिर भी बहानाबाजी अगर तू करता है तो ये तो सात पद भरतार वाली रोती है ऐसी बात हो गई। तो आशय गंभीर होने से एक पत्र में इस कहावत का प्रयोग किया है। पुरुषार्थ का स्वरूप में सबसे पहले निश्चय करो, निर्णय करो और आत्म कल्याण को टॉप प्रायोरिटी में ले जाओ, उतना पुरुषार्थ करो ने। चलाए थे, क्या नाम आपका? विभाकर में आए थे, वैष्णव संप्रदाय में से आ रहे हैं, सुनने की रुचि लगी है, तो कल आए थे, बोले कि हम क्या करें, हमारी तो ये हालत है। ठीक है, अब तो नीम का काम करना है, सबको सबसे पहले फाउंडेशन का स्टोन जो है वो रखना है, फिर उस पर स्ट्रक्चर होगा जो होगा। तो बिना फाउंडेशन शिलान्यास ही नहीं होवे, कैसे उस पर चंतर होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। कोई रेत के ढेर पे कोई मकान बन सकता है क्या? ढह जाएगा वो, पाया का पत्थर वो है। कोई भी नए हो पुराने हो, पुराने हो तो भी जिसने काम चालू नहीं किया वो तो नए ही है, वो काम पुराने हैं, वो भी इस काम के लिए तो नए ही है। तो राजेश भाई भी आए थे, नए हैं क्या करें, पहला काम वो है जीवन में अपना जीवन का ध्येय नियुक्ति करो, क्या करना है इस उम्र में, यानी युवानी में व्यवसाय होता है, कई प्रकार की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, आशाएं होती रहती है। ऐसी परिस्थिति में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इस क्षेत्र में प्रवेश होता है, तो जीवन को मोड़ देना है हमको। जैसे अन्य मनुष्य जीवन जीते हैं ऐसा ही जीवन जीना है, खाना पीना और सो जाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा ही करना है या हमें आत्मकल्याण कर लेना है? ये तो सब कर ही रहे हैं, पर करते करते सब अधोगति में चले जाते हैं। हम जो वास्तव में आत्मकल्याण करना है, तो आत्मकल्याण का विषय टॉप प्रायोरिटी में अपने परिणामों में रहना चाहिए, हर परिणाम में। ऐसा नहीं कि हमने अभिप्राय बांध लिया है, हर परिणाम में ये रहे तब तो अभिप्राय है, और बाकी जो सांसारिक जीवन है, व्यवसाय है, जो भी कुछ है, वो तो साइड बिजनेस दौड़ता से चलता रहे, जैसा भी चलना हो प्रारब्ध के अनुकूल चलता रहे, हमें उसमें ज़्यादा माथा लगाना नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुकूल चलेगा, माथा लगाओ तो भी भले, नहीं लगाओ तो भी भले, क्योंकि उसमें तो पूर्व कर्म का उदय ही काम करता है, उसमें कोई अक्ल होशियारी काम करती है ऐसी बात नहीं है। बाजार में ऐसा कौन व्यापारी है जो अक्ल होशियारी को अप्लाई नहीं करता है? ऐसा है कोई नहीं है, सब करते हैं। लेकिन सबको प्रारब्ध के अनुकूल मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, तो उसको तो गौण कर दो और अपने आत्मकल्याण को मुख्य करो। अगर उतना होगा तो फिर आगे का काम सरल है, उतना नहीं हुआ और हमने पढ़ लिया, सुन लिया या कुछ पूजा भक्ति कर लिया, तो वो ट्रेडिशनल बात है, रूढ़िगत बात है, वो इससे कभी किसी का आत्मकल्याण न हुआ है न होने वाला भी है। अब कहते हैं कि निर्जीव पुरुषार्थ कर ऐसा संयोग एवं सच्चा आत्मस्वरूप बरताने वाले सत्पुरुष बार बार नहीं मिलेंगे। देखो कृपालु देव का जहाँ वजन है वहाँ ही वजन बैंसरी का गया है, है क्या नहीं? आगे भी कहा कि तुमको सत्य स्वरूप बतलाने वाले मिला है, अब कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ कर ऐसा सुयोग सच्चा आत्मस्वरूप बतलाने वाला सत्पुरुष बार बार मिलने वाला नहीं है, वो हर वक्त नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा विश्व में कोई चीज की शॉर्टेज है तो ये सत्पुरुष की है, बाकी सब उपलब्ध है, सब चीजें मिलती है, हाँ इसकी शॉर्ट सप्लाई है, कुदरती ऐसी व्यवस्था है, और आज के काल में तो दुर्लभ से भी, चतुर्थ काल में भी दुर्लभ था तो पंचम काल में तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इस तरह से जीव को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है, नंबर का नंबर यहाँ भी पुरुषार्थ की प्रेरणा दिया है, 51 नंबर में प्रेरणा का बोल है। आकाश पाताल भले एक हो जाए परंतु भाई तो अपने ध्येय को मत चूकना, किसी भी परिस्थिति में। आकाश पाताल एक हो जाए इसका मतलब क्या कि एक होता नहीं है, फिर भी भले ही हो जाए, यानी 22 परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, अनएक्सपेक्टेड होता है ना कभी, अनाप शराब कोई बात बन जाती है, कितनी भी बन जाओ, परंतु भाई तो अपने देह को मत चूकना। अपना जो आत्मकल्याण का, परिपूर्ण आत्मकल्याण का ध्येय है, ये तुम चूकना मत। क्यों? कि जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये मनुष्य भव बार बार मिलता नहीं, और ये मनुष्य भव में ऐसे सच्चा स्वरूप बताने वाला सत्पुरुष भी बार बार मिलता नहीं, हम जब मिला है तो आकाश पाताल भले क्या निर्णय होना चाहिए, मुमुक्षु का कैसा दृढ़पना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमको हमारा देह से च्युत होना नहीं है, हमको कभी हमारा देह से च्युत नहीं होना है, किसी कीमत पे च्युत नहीं होना है, कुछ भी हो जाए हो जाने दो, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, अपने देह को मत चुकना और अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। मैंने आत्मकल्याण के विषय में हमारा जो प्रयास है वो तो परिस्थिति बस हम छोड़ दें वो तो बात कभी होनी चाहिए नहीं। क्या होता है कि कभी समाज की उलट पुलट अवस्था हो, परिस्थिति होती है तो छोड़ देता है, कोई समाज वाले ऐसा कहेंगे, समाज वाले ऐसा कहेंगे तो छोड़ देते हैं, कभी समाज का सन्मार्ग के प्रति भी विरोध होता है, सत्पुरुष के प्रति भी विरोध होता है, तो बहुभाग लोग ऐसे होते हैं तो समाज का रूप क्या है, इतने लोग विरोध में खड़े हैं तो कुछ बात तो ठीक होगी, तो बहुमति के पक्ष में चला जाता है। या धर्म के विषय में बहुमति के पक्ष में जाना ये बहुत बड़ी भूल है, क्यों कि बहुभाग लोग तो इस विषय को समझते नहीं हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। समझदार के पीछे चलना, ज्ञानी को अनुसरण करना या समाज को अनुसरण करना, समाज तो संसार के लाइन में जाने वाला है, ज्ञानी मोक्ष की लाइन में जाने वाला है, तो कहते कि समाज के लिए भी मत चुकना और कुटुंब के लिए भी मत चुकना, ठीक है, यानी अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, समाज के लिए भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना और कौटुंबिक कारण के लिए भी अपना प्रयास मत छोड़ना, और कुटुंब विरोध में हो सकता है, अनुकूल नहीं भी हो, पर शरीर के कारण से भी नहीं छोड़ना प्रयास को। क्या करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य को गौण करके भी हमें सत्संग की उपासना करनी है, सत्संग की उपासना वही वास्तव में आत्मा की उपासना है और वही आत्मकल्याण है, इसलिए उसे गौण नहीं करना है। और दान का शिक्षा है बाद में करेंगे। तो कहते हैं कि अपने प्रयत्न को छोड़ने में प्रतिबंध आड़े आता है, प्रयास को छोड़ने में कभी समाज का प्रतिबंध आड़े आता है, कभी कुटुंब का प्रतिबंध आड़े आता है, कभी शरीर का प्रतिबंध आड़े आता है, कभी हमारे संकल्प विकल्प का प्रतिबंध भी आड़े आता है, हमने बात दूसरी सोची हो बनता है कुछ दूसरा या होता है कुछ दूसरा, छूटता नहीं है। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, देखो कुछ भी कार्य करते हो हमारे आत्मार्थ को पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है, हमारा आत्मार्थ का लक्ष्य रहता है कि नहीं रहता है, हर कार्य में अगर वो नहीं रहता है तो आत्मार्थीपना या मुमुक्षुपना नहीं है, मुमुक्षुपना या आत्मार्थीपना इसको कहा जाए कि जो अपने ध्येय को अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा बिना लक्ष्य को छोड़े साथ में रखते हुए ही कोई भी कार्य करता है। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, आत्मार्थ के पोषण विरुद्ध कोई कार्य हो तो नहीं करना, तो बात इसमें आ जाती है कि ये कार्य तो हमारे आत्मार्थ को छुड़ाता है या आत्मार्थ से विरुद्ध होता है, तो ऐसा कार्य हमें किसी कीमत पे नहीं करना है। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, जिस ध्येय को बांधा है, जिस ध्येय के पीछे तुम लगा हो, वो पूर्ण हुए बिना शांति से बैठना नहीं। गुजराती में ऐसा कहते हैं, जंप वाले ने बैसिस नहीं, जंप वाले ने मैंने शांति से अजंपा रखना। इसका मतलब क्या हुआ? अजंपा रखना, अरे मेरा कार्य बाकी है, अरे मेरा कार्य बाकी है, मैं कैसे शांति से सो जाता हूँ, शांति से चलता हूँ, ये बात कैसे बनती है? अब जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य सिद्धि मिलेगी, कदाचित तुमको मिलेगी, कदाचित नहीं मिलेगी, वो बात यहाँ नहीं है। बेंसरी के वचनामृत में बहुत सी जगह उन्होंने अपने अनुभव से ऐसी बातें लिखी है, जैसे गारंटी दिया कि तुम ऐसा करो तुम्हारी सफलता निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पर प्रारंभ में होगा तो सफल हो जाएगा, प्रारंभ में नहीं होगा तो सफल नहीं हो जाएगा, वो बात नहीं है। अगर तुम्हारा अंतर से सच्चा प्रयास हुआ तो प्रारब्ध को बदलना पड़ेगा, कर्म रेखा बदलती है, ये आपकी रेखा भी बदल जाएगी तुम्हारी, वरना क्या होता है, वो तो जन्म से जैसी होती है वैसी रहती है। लेकिन एक विश्व में यही जिनेन्द्र का मार्ग है, सन्मार्ग है, बहुभ्रमण से छूटने का, मुक्ति का जो मार्ग है, तो मार्ग एक ऐसा है कि जिसमें कर्म को भी रेखा बदलनी पड़ती है, कुदरत को भी बदलना पड़ता है। तो कहते हैं कि अवश्य सिद्धि होगी। तो अगर तुम्हारा ऐसा निश्चय है कि भले ही आकाश पाताल एक हो जाए, मैं मेरे प्रयास को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तो छोटी मोटी बात में गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं, आकाश पाताल एक हो जाए तो भी मेरा जो मुक्ति का प्रयास है, मेरा आत्मकल्याण का प्रयास है, इसमें फिर नहीं हो सकता, उसको अवश्य सिद्धि होती है, होती है और होती ही है। अनंत ऐसे धर्मात्मा या सिद्धात्मा हुए, उसमें एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई अपवाद के कारण से दूसरा कुछ बनता हो, ये वस्तु स्थिति है, उसमें सफलता अवश्य मिलती ही है, ये बात गारंटेड है। तो यहाँ भी 51 के वचनामृत में आत्मकल्याण की और आत्मार्थ की प्रेरणा दी है। यहाँ तक आगरा वाली सुनीता बहन जैन से एक बहनश्री के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 1001 रुपया सत्साहित्य ग्रंथ प्रकाशन के लिए वितरक सत्साहित्य तथा प्रसार पुष्पाल नगर को जाहिर किया जाता है।
गुरु प्रभु भगवान की जय।